سألك کا کا کیا ہے ادھر؟ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے، جیسے آج علماء کرام سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، استادوں سے شاگرد سوال جواب پوچھتے ہیں نا، بالکل وہی انداز ہے کہ آپ امیجینیشن میں لائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور کوئی آ رہا ہے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ اللہ ہے، کدھر ہے، سنتا ہے کہ نہیں، کوئی اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے آ کر پوچھے، یعنی ظاہر ہے کہ اب وہی تو اللہ کے نبی پہ اترتی تھی نا، تو آنے والے نے اگر کوئی بات کہنی پوچھنی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی تھی، تو اللہ کے نبی کا یہاں تذکرہ آپ کی عزت بڑھانے کے لیے بھی ہے، پہلی بات ہے، اور تعلق بھی جوڑا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ سال کا، اب آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آواز، میں صرف اس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ہمیں مزید سیکھنا ہے، اور اس طرح سیکھنا ہے کہ جیسے آپ لوور سے اپر اور اپر سے پھر ہائی پہ جاتے ہیں، اگر یہاں یہ ہوتا آپ سے مانگے تو دیکھیے پھر وہ بات ہو جانی تھی جو آج کئی لوگ بزرگوں سے مانگتے ہیں، بات سمجھ کے ہوں گے نا، اردو میں فرق سمجھا دیتی ہوں کہ یہاں آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب لوگ آپ سے مانگیں، نہیں، جب آپ کے پاس آئیں، اور سال کا کون آئیں، آنے والے کون ہیں؟ عبادی، میرے بندے، اب اس طرح لفظ عبادی پہ غور کرتے ہیں، عباد عبد کی جمع، اور یا کنا بدو میں بندگی میں ڈوبا ہوا بندہ، سارے رب کے بندے ہیں لیکن اللہ کچھ کو کہتے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے 18th پارے کے بعد 19th میں، کیا پتا چلا کہ بندے تو سارے ہی رب کے ہیں لیکن یہاں اللہ نے لفظ عبادی بولا، دیکھیے یہاں بہت سارے لفظ آ سکتے تھے، مثلا صحابک، آپ کے صحابہ، ہاؤلائی، یہ لوگ، اللذی نامنو، یہ لوگ، مومنون، اللہ نے یہاں ان میں سے ایک بھی لفظ نہیں بولا بلکہ کیا کہا؟ عبادی، فرق سمجھیے گا، اگر یہاں کسی صحابی کا نام یا ایمان یا محسن یا کسی نیکی کا ذکر آتا نا تو پھر یہی تھا کہ دعائیں صرف نیکی لوگ کریں، اور اللہ کے نبی کے قریب تو بہت ہی نیک لوگ تھے، اللہ نے یہاں لفظ عباد بولا، بھی یا کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھپا لے لفظ عباد کو، دیکھیے بندے، کوئی بھی بندہ، اور دیکھیے گا نکرہ ہے، مسلمان، مومن، کافر، نیک، نمازی، بے نمازی، کوئی بھی بندہ آ کے آپ سے میرے بارے میں پوچھ سکتا ہے، اور عباد کے لفظ کے ساتھ یا لگا دی، یا جو ہے انگلش میں ایسے ہے جیسے مائی، آئی، مائن، اردو میں آپ کہتے ہیں میرے، مجھے، میں، یہ انداز عربی زبان میں کب آتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جہاں بھی قرآن پاک میں کی نا تو کیسے کی، جیسے اِنَّا نَزَّلْنَاهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی جمع میں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات، یا اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہو کا لفظ بھی استعمال کیا، هُوَ الَّذِي هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جنرل بات ہے، یعنی اللہ نے کبھی اپنے آپ کو ہم کہا ہے، کبھی وہ بھی کہا ہے، اور قرآن میں بہت کم جگہ پہ اللہ نے یا استعمال کی ہے میرے کے لیے، لکھے گا، عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یا کے ساتھ لکھا ہے نا تو اس میں دو مقام ہوتے ہیں، یا تو پیار کی انتہا تو یا غصے کی انتہا، یعنی آئی اینڈ می از ایکسپریشن آف لو اور اینگر، یا تو اللہ کو جب بڑا پیار آتا ہے کسی پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، کیا پتہ چلا، خلاصہ کر دیتی ہوں، اللہ نے اپنے تعلق کو محسوس کروایا ادھر، جب میرے بندے، آپ اپنے پر لیجئے، بچے تو ساری ماں کے ہیں، ایک بچہ ماں کی بات بڑی مانتا ہے تو ماں کہتی یہ میرا بیٹا، بس یہی میرا بچہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس پہ اگر غور کریں نا تو ہمیں دنیا میں سارے غم بھول جائیں، بریڈ گھر میں ہے کہ نہیں، دکانیں کب کھلنی ہیں، جاب پہ جانے کہ نہیں، یاد رکھیے کہ ہم نے اپنا بہت سارا ٹائم بالکل ان امپورٹنٹ انفارمیشنز اور نیوز کو دے دیا اور خبروں کو دے دیا، और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ठीक है ना, हम वी आर सो बिजी, वी डोंट हैव टाइम टू लर्न. हालांकि कुरान की एक आयत खुल जाती है, उससे इधर से उधर होने को दिल नहीं लगता. चलिए, वाइजा साल का इबादी अन्नी, मेरे बारे में. अब मेरे बारे में पूछने से पता चला कि बंदों को ये पता होता कि हमारी दुआएं सिर्फ अल्लाह ही सुनता है. आप देखिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से यहाँ ये जुमला कहलवाना, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, इसके बीच में एक मिसिंग चीज लग रही है, नोट करिएगा, छोटी बात है, फकुल लहुम. अब स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट्स नहीं है इंशाल्लाह वो जब कुरान को सीखना शुरू हो जाएंगे बाकायदा, तो फिर वो भी इंजॉय करेंगे. अभी बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत दे दे. इधर ये जुमला आना चाहिए था, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फकुल्लहुम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछिए तो उनको आप कहिए कि फ़इन्नी करीब. लेकिन फकुल्लहुम इधर नहीं है. क्यों? कि पढ़ते हुए मेरे बंदों को ब्राहे रास्त ही मेरी तरफ से जवाब मिल जाए, नबी को भी साइड पे करके कहा फ़इन्नी करीब. कितनों को बात समझ आई है? अन से या मैं, मेरे बारे में, अबाउट मी, मैं कौन हूँ, मैं किधर हूँ, मैं सुनता हूँ कि मैं नहीं सुनता, मैं दूर हूँ, मैं क्या हूँ, मुराद है कि अबाउट मी. अन नी को लिखिए अबाउट मी. जब मेरे बंदे आपसे आकर मेरे बारे में पूछेंगे, आप देखिए ना कि अगर किसी को कोई शक होता है तो वो शक आकर नबी से पूछ लेता है, दूर हो जाता है. आज के दौर में किसी साहिब इल्म से पूछेगा तो दूर हो जाएगा. तो यहाँ जो लफ्ज, ये नहीं कहा गया कि देखिए मौजूद तो नबी थे ना, बस इमेजिनेशन वैसे ही रखिए कि सहाबी आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात पूछता है. तो देखा जाए तो बज़ाहर तो अल्लाह के नबी पास थे ना, वरना फिर ये गड़बड़ हो जाती थी कि फ़ाइनली करीब, मैं जो तुम्हारे करीब हूँ तो बात करो. जैसे लोग कहते हैं बात करो, किसी ने कहा, यानी ये देहात की बात है, जोहराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ 2-3 साल से, तो इर्द गिर्द बहुत जहालत है और गुर्बत भी और बेदीनी भी है और मज़ार बहुत है. तो किसी ने जो मुझसे बात शेयर की, खुलासा है उसका कि किसी ने कहा कि आओ दुआ कर ले, तो कहती है बाजी दुआ तो मज़ार पे जाके करते हैं, बाजी दुआ तो बाबा जी के जा पास जाके करते हैं, वो तो कब्र पे करते हैं. ये हालात है. तो बात वाज है, फ़ाइनी करीब कौन? अल्लाह करीब है. नबी तो है ही था, लेकिन नबी को भी बीच में से निकाल दिया. यहाँ जुरत के साथ एक बात कहूंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा वरना आप गलत ना समझ जाए. अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ इख्तियार ऐसे हैं अपने सिवा औरों को भी दिए हैं, लंबी लिस्ट है. शौहर को कुछ ऐसा हस्बैंड होते हुए इख्तियार दिए, वाइफ को दिए, माँ को, बच्चे पे, बाप को, भाई पे, इंसानों को भी दिए. चलो तुम ये कर लो, जाओ तुम भी कर लो. अल्लाह के नबी को बहुत सारे इख्तियार दिए अल्लाह ने. एक इख्तियार ऐसा है, वन थिंग अल्लाह ने किसी को नहीं दी, और वो है दुआओं की कबूलियत. लिख लीजिए, हम इंशाल्लाह सूरत मोमिन पे जब पहुंचेंगे दरे कुरान में, तो उसका तो टॉपिक ही शिर्क फित दुआ है. हर साल बोलती हूँ, इस साल वहां एक फितना आएगा, आप देखिएगा. क्या पता चला कि दुआ की कबूलियत का इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं, वरना आपकी अपनी बहुत सारी दुआएं पेंडिंग पे रहीं, कुछ देर से हुई, आप कबूल कर लेते. तो फाइनी, बस बेशक मैं करीब हूं, यानी मेरे बंदों से कह दो कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ. कैसे करीब है अल्लाह ताला, इसको जरा सा देख लीजिए. आप देखिए कि आप इम्तिहान दे रहे हैं और एग्जामिनर घूम फिर रहा बीच में, हो सकता है कोई स्टूडेंट नजर बचा कर जरा से इधर उधर पीछे मुंह कर ले, होते हैं ऐसे बहुत सारे, बताना ना जरा. और वो तुम्हें पता नहीं कि मदद करनी चाहिए और हकूकुल इबाद बड़े होते हैं और ये वो तावन करो. लेकिन अगर वही एग्जामिनर घूमता फिरता बीच में आकर एकदम आपके ही पास खड़ा हो जाए और आप लिख रहे हैं, पीछे से वो आपका पेपर देख रहे हैं, अल्लाह की बना कितना खौफ आता है, हाथ कांपने लगते हैं, बंदा डर जाता है, ओहो क्या हो गया. और वो पेपर पढ़े और जो आता वो भी नहीं है, और जो ही जरा सा वो टले ऐसे लगा कि मलकुल मौत ही पीछे से हट गया. करीब होने का एहसास बंदे को सीधा कर देता है। यहां फनी करीब के लफ्ज में दो बातें लिखी है, एक तो अल्लाह ताला ने क्लोज वॉचनेस की बात की है, बड़ी करीब से तुम्हें वॉच कर रहे हो, मस्तियां ना करना, शोखियां ना करना, अपने आप को ये ना करना और वो ना करना, पहली बात। और दूसरी बात इसमें करीब में दुआओं के एंगल से देखिए, तो किसी से भी मांगना हो तो किससे मांगेंगे आप? मसलन अगर मेरे गले में खराश आए, मैं कहती हूँ पानी दीजिए, किसको कहूंगी? जो करीब होगा। करीब बैठे बच्चे से माँ बात करेगी तो मांगेगी, या दूसरे फ्लोर पे बैठे किसी बच्चे से मांगेगी, तो करीब में कुर्बत है कि अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ आसमान पे है, लेकिन इल्म, समात और बसारत, तीन खूबियां अल्लाह की, अल अलीम, अल बसीर और असमी, इसके नाते से करीब है। अल्लाह ताला सातवें आसमान पे है, सही हदीस से पता चलता है, लेकिन वहां रहते हुए हर बंदे के करीब है। और सूरत काफ में तो फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शहरक से भी करीब है। कैसे? शहरक वही जो काट दें तो फिर बंदा मर जाता है, क्योंकि वहां से ही आप देखिए कि कानों की और आंखों की और जुबान की सारी वेन्स गुजरती हैं, रगे गर्दन जिसको आप कहते हैं, शहरक कह लीजिए। कि इतना गरीब होने से मुराद यह है कि जो देखते हो वो भी देख रहे हैं, जो सुनते हो उसको उसका भी पता है, जो कर रहे हो सब पता है, तो दूर ना समझना। तो दो तरह से करीब हो गया, नंबर एक तुम मांगो तो उसे क्यों कहते हो दूर? अल्लाह दूर है फिर तो चलो तुम्हें किसी और करीब वाले से मांगना पड़े, वो तो है ही बहुत करीब। वैजा साल कई बात यन्नी फनी करीब, इतनी बात अभी हुई है हमारी, लेकिन समझाना मकसूद था। आगे चलिएगा। उजीबू, मैं कबूल करता हूँ। उजीबू का लफ्ज उर्दू में जैसे जवाब देना है ना, बिल्कुल वही लफ्ज है। उजीबू, मैं जवाब देता हूँ, किसका? दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार का। कब? इजा दान, जब भी वो पुकारता है। इस इजा का एरो पकड़ कर ले जाइए फिर शुरू वाले इजा पे, बिल्कुल वही बात इधर है। जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं फौरन जवाब देता हूँ। यहाँ लफ्ज उजीबू पे थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, अरबी जुबान में जवाब देने या कबूल करने के लिए दो लफ्ज आते हैं। एक तो यहां आ गया इजाबा, उजीबू की सूरत में इधर आया, और दूसरा के इस्तजाबा। कुरान पाक में बहुत जगह आता है, फस्त जब ना लहू, हमने कबूल किया। फर्क क्या है दोनों में? जब इजाबा का लफ्ज आया जो इधर आया, और इस्तजाबा हो, इस्तजाबा में कहते हैं क्योंकि मांगता रहे, फिर मैं जब चाहूंगा दे दूंगा। ठीक है, या ऐसे होता है कि आपके फोन में बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं, तो आप कुछ अर्जेंट या जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम कर रहे हो, तो उनके फौरन ले लेते हैं। कुछ आपको फ्रेंड्स के दिखते हैं, कुछ रिलेटिव्स के दिखते हैं, आप कहते हैं इट्स ओके, इंशाल्लाह रात को शाम को फारिग होके चाय का कप हाथ में लेके इनको भी टैकल कर लूंगी। ठीक है, इसमें कुछ मैसेज मिस भी हो जाते हैं। अल्लाह ने यहाँ इस्तजाबा नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि आले इमरान सूरत 195 में फस्तजाब लहुम रब्बुहुम की बात आती है कि अल्लाह ताला जब चाहता है फिर दुआओं को सुन लेता, किसी की 40 साल में, किसी की उसमें। लेकिन लफ्ज इजाबा क्या है? फौरी रिस्पॉन्ड, फौरन ही सुनता है, फौरी। तो यहां उजीब कहकर अल्लाह ने तसल्ली दिला दी कि वैसे तो देर हो जाती है दुआ में, लेकिन मैं तुम्हारी फौरन ही सुन लूंगा। उजीब दावत दाई जादानी, दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जो आपको मुझे ये यकीन दिलाए? कोई शौहर कह सकता है मेरी बीवी जब भी पैसे मांगती है मैं फौरन दे देता हूं? कोई माँ बाप ये दावा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ने इधर मुंह से बात निकाली उधर हमने उसकी सुन ली? वैसे तो माजरत के साथ आजकल के पेरेंट्स के साथ मामला कुछ ऐसा ही है। आजकल बच्चों के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि माँ बाप उनकी हर बात सुनने लगे, और आधी रात को आइसक्रीम खाने को दिल चाहे तो कोई इनको रोक नहीं सकता। अब आप इमेजिनेशन में लाइए, एक जवान बच्चा, उसकी ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए। माँ बाप और ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में माएँ उसके लिए रिश्ते ढूंढती हैं। बच्चे की क्या ख्वाहिश है? उजीबू हो जाए, फौरन ही रिश्ता हो, जो भी है मिलनी है मिल जाए। माँ का क्या मशवरा है? इस्तजाबा, नहीं, लंबी नहीं है, गोरी नहीं है, काली नहीं है, नहीं चाय नहीं बनानी आती होगी इसको, ये नहीं आता होगा। अब वो बच्चा जिसकी माँ को उसके लिए कोई रिश्ता ही नहीं पसंद आ रहा, और वो अपने जिस्मानी तकाजों पर मजबूर है, उसको साथी चाहिए, जायज़ हलाल ताल्लुक चाहिए ताकि वो गुनाह से बच सके। तो फिर वो बच्चा, वो जवान बच्चा क्या करे, अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया, मेरे पास तो आओ। ये माँ को क्यों कहते हो रात को तहज्जुद में या ईशा के बाद दो नफिल पढ़ो, मेरे सामने हाथ खड़े करके कहो कि मेरे मालिक मेरा रिश्ता करा दे, मेरी शादी हो जाए, देखना उजीब उदावतदा इजादान, मैं तुम्हारे साथ ये मामला कर दूंगा। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अल्लाह से मांगो, शुरू से ही अम्मी से कहो, मामा ने दिया, पापा ने दिया, उससे मांगो, उससे मांगो। देखिए शुरू से आप अपने बच्चे की तौहीद पुख्ता कर दें, आगे अल्लाह ताला आपके लिए बहुत खैर करेगा। तो अपने बच्चों को अपना नहीं, अल्लाह का, अल्लाह ताला की हस्ती का रास्ता दिखाइए, वो सुनेगा, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात है ही ऐसी। तो उजीब उदावत दाई ज़ादान, जब भी जो पुकारेगा मैं उसकी बात दूंगा। और नतीजा क्या होगा उसके बाद, कि तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिल जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ने तो कहा मैं दे दूंगा, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। सवाल यह है कि मांगने वाले पे कोई लाइबिलिटीज भी आती हैं, कुछ जिम्मेदारियां आती हैं आपके मेरे ऊपर अपनी दुआओं को कबूल करवाने की। सवाल लिखिए, दुआ मांगने वाले पर भी कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जी फल यस्तजीबू ली, चलो तुम भी तो फिर कबूल करो, तुम भी तो फिर मेरी दावत को कबूल करो। इसको जरा लिखिए अपने पास अलग से, फल यस्तजीबू ली में। यहां अब आपको वो फर्क समझ आ जाएगा जो मैंने अभी ऊपर बताने की कोशिश की है, इजाबा और इस्तजाबा में। हमें अल्लाह ने कहा कि मैं उजीबू दावत अदा, मैं तुम्हारी फौरी कबूल कर लूंगा, वही बात है, यहां कर लूं, मुसीबत को टाल दूं या आखिरत में तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम कम अज कम फल यस्तजीबू ली तो करो। इस्तजाब में क्या था, चलो फौरी भी अल्लाह का हुक्म सुन लो, फर्ज होते अजान होते ही नमाज पढ़ लो, कोई बात नहीं 15 मिनट बाद भी पढ़ लो, अभी आदत नहीं हो रही, पूरी नहीं पा रहे तो सिर्फ फर्ज ही पढ़ लो। यानी इस्तजीबू में अल्लाह ने हमें रुख्सत दे दी। ये भी तो हो सकता था ना, उजीबू से बात शुरू करूंगी, नजर जमाइएगा, उजीबू दावत दाई जादानी फल उजीबू ली, तुम भी तो जवाब दो। उसमें क्या था कि अल्लाह सिर्फ उनकी दुआएं सुनेगा जो फौरन नेकियों के लिए उठ जाते हैं, अव्वल वक्त की नमाजें पढ़ने वालों की अल्लाह सुनेगा। नहीं, और इसमें अल्लाह इशारा दे रहे हैं कि रमजान आ रहा है, आप अल्लाह के करीब हो जाइए, फल यस्तजीबू ली, तुम भी तो अल्लाह की शरीयत का जवाब दो, हय अलस सलाह के जवाब में निकल पड़ो नमाज की तरफ, हय अलल फलाह की सूरत में निकल पड़ो अल्लाह की तरफ। समझ आ गई कि फिर तुम भी तो मेरी मानो ना। देखिए दुनिया में भी तो आप कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, तो दुनियावी ताल्लुकात कब अच्छे निभते हैं, आप मेरी केयर करते हैं मैं आपकी करती हूँ, आप मेरी खातर करते हैं मैं भी करती हूँ, ये खातर मदारत क्या है। तो बात सिर्फ समझने की है कि जो बंदा अल्लाह की बात सुनता है, ज्यादा सुनता है, जल्दी सुनता है, अल्लाह को वो बंदा ज्यादा प्यारा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। माँ को वही बच्चा अच्छा लगता है जो पहली पुकार पे कहे जी अम्मी, और दूर से आके जी नहीं कहता, करीब आके कहता है जी मामा। बड़ों को दूर से आवाजें नहीं देते, पास आके अदब से बात करते। ये चीजें आपके मेरे बड़ों ने हमें सिखाई हुई है, आज बच्चे दूर से बोल रहे होते हैं। चलिए वल यूमिनू भी, और फिर मुझ पर ईमान भी तो लाओ। सवाल पैदा होता है कि यहां किस ईमान की बात है, क्योंकि अल्लाह पे ईमान था तभी तो उससे मांग रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, वल यूमिनू भी से यहां क्या मुराद है, इस बात पर ईमान लाओ कि मेरे सिवा कोई दुआओं को सुनने वाला नहीं है। बात बात है, यानी ईमान बिल्लाह का ये एक तकाजा है कि अल्लाह के सिवा कोई दुआओं को नहीं सुनता, इस पर ईमान लाओ। और साथ ही साथ ला लहुम यरशुदून, ताकि तुम नेक रास्ता पाओ, नेकियां करो। नोट कीजिएगा, बहुत ही बारीक बात है, अल्लाह ताला वहां दुआएं कबूल करता है जहां नेकियों के काम होते हैं। सूरत आल इमरान में हजरत जकरिया और हजरत मरियम का एक मुकालमा है कि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करती थी और हजरत जकरिया आए और उनके पास बिन मौसम के फल देखे। तो जब फल देखे तो पूछा मरियम ये कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो हुनालिका दा जकरिया रब्बहू के लफ्ज आते हैं, उसी जगह जकरिया ने अपने रब को पुकारा। तो नोट कीजिएगा, नेकियां की जाए और उसके फौरन बाद दुआ की जाए तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। इस एक आयत ने आपको मुझे अल्लाह से मांगना सिखा दिया। रब से मांगिए, किसी और से ना मांगे। कोई बीवी अपने शौहर के सिवा अगर किसी दूसरे से कहे, भाई साहब कुछ पैसे दे जाइए, असल में मेरे मियाँ मुझे बहुत थोड़े पैसे देते हैं। शौहर होने के नाते सोचिए आपके दिल पे क्या गुजरेगी। आपके दोस्त क्या बल्कि पार्टनर घर में आए जिनके साथ ऐसे ही शरीका चलता है, और आपका बेटा जाए, अंकल 10 रुपए तो दे दे। असल में अब्बू देते नहीं है, इनके बैंक में लाखों करोड़ों पड़े होंगे लेकिन मुझे नहीं देते। यकीन कीजिए आपके वो जो पार्टनर है ना, वो आपके बच्चे की इस बात पे खुशी में 10 नहीं देंगे, उसको शायद 50 का नोट दे दें। लेकिन आपको कितना गुस्सा आएगा उस पे कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, तुमने मेरी नाक कटा दी, मेरी शरीके में खड़े होने की जगह नहीं दी। तो जब आप और मैं दूसरों के साथ ऐसा मामला करें तो क्या होता है? आपका बच्चा किसी और से मांगे आपको बुरा लगता है, तो जब हम अल्लाह के माँ सिवा से मांगते हैं तो अल्लाह को बुरा लगता है। तो चलिए क्या सीखा हमने, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह पे नजरें लगानी है। इसी कायत ने आपको मुझे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया, दुआ तो मांगनी सीख ही ली कुछ ना कुछ हद तक, ये दुआओं का रमजान से क्या ताल्लुक है? क्योंकि आज का मेरा टॉपिक क्या है, रमजान शहरुद्दुआ, रमजान दुआओं का महीना है। तो ये कैसे है और किस तरह से है इसको समझिएगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, सुनन अल कुबरा अल बहकी की रिवायत है 6484, सलासु दावाते ला तुरद्दु दावतुल वालिदी वदावतु साइमी वदावतुल मुसाफिरी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। किसकी? बाप की औलाद के मामले में, रोजेदार की और मुसाफिर की। अब बाप की दुआ पे बात इस वक्त करने का मौका नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो माओ की दुआओं की बात होती है। माँ की दुआ जन्नत की हवा, रिक्शों के पीछे और बसों के पीछे भी लिखा होता है कभी कभी। लेकिन वाकई हकीकत है कि बाप की दुआ कबूल होती है औलाद के हक में। क्यों? वजह इसलिए कि बाप देते ही कम है, कभी कभी देते हैं। माएँ हर वक्त देती हैं तो अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, फरिश्तों अगर इसकी ये ना सुनी ना, अभी 15 मिनट बाद दूसरी तरह से इसने दुआ शुरू हो जानी है। तो बहरहाल अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। और एक बात बताऊं, माँ बाप की दुआएं जब रंग लाती हैं ना, तो जिंदगी में पंप एंड शो, ग्लैमर, खूबसूरतियां आए ना आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप की दुआएं आपको दो रंग में बहुत फायदा दे जाती हैं। एक ये है कि आप दिन ब दिन नेकियों में बढ़ते जाते हैं, और दूसरी ये कि आपके दिल से गुनाहों की मोहब्बत कम होती है। कभी भी मार बाप की बददुआ ना लीजिएगा, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी को अजीरन कर देती हैं। बिस्तर पे इंसान एड़ियां रगड़ के मर रहा होता है, और शायद उसकी वजह ये होती है कि माँ या बाप को किसी ऐसी चीज में नाराज किया जिसमें नहीं करना था। तो रोजेदार की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है इस वक्त हम बात करें। रोजे की हालत में दुआओं की कबूलियत है। क्यों? आप माँ हैं अगर या बाप हैं, या जिससे भी आपको ज्यादा प्यार है उसको तसव्वुर में लाइए। बच्चा भूखा हो, होंठों पे पिपड़ियां जम रही हों और आपसे कुछ मांगे, उस वक्त अंदर जोश आता है कि नहीं आता? और दूसरी तरफ खाया पिया बच्चा, अभी खूब अभी खिला पिला के किचन भी नहीं साफ किया आपने, और आज मामा चिप्स बना दे, मामा फिश बना दे, तो कितना गुस्सा आता है। रोजेदार एक मिसकीन शक्ल का इंसान बन जाता है, और अल्लाह को पता कि इसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है, तो मैं क्यों ना इसको दूं। तो अल्लाह का प्यार लेने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए रोजे रखकर खूब दुआएं कीजिए। रोजा बजाते खुद देखिए कब इबादत है, और इबादत दर इबादत कब बनेगा, जब आप इसमें दुआएं भी मांगेंगे। और दुआ इतनी खूबसूरत और आसान सी इबादत है कि जिसमें मिलता फिर आपको ही फायदा है। देखिए ना, आप नमाज पढ़ते हैं, वजू करना पड़ता है, खड़े हुए, रुकू किया, क्याम किया, थकन हुई ना? आप हज पे जाते हैं तो बहुत ही थकन है, आप सदका खैरात करते हैं, बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर आप दुआ करते हैं तो दुआ हो ले बादा, तो लिहाजा दुआएं मांगनी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला माहे रमज़ान के हर दिन और रात में लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं, और माहे रमज़ान के हर दिन और रात में हर मुसलमान के लिए एक ऐसी दुआ है जिसे कबूलियत से नवाजा जाता है। सही तरगीब व तरहीब 1002। तो क्या पता चला कि रमज़ान के हर दिन और रात में अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, यानी लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह इस रमज़ान में हमें भी, जितने लोग सुन रहे हैं हमारे साथ, अल्लाह इन सब को भी जहन्नुम से आज़ाद कर दे। और एक ऐसी दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, ए अल्लाह हमें वो दुआ की घड़ी, कबूलियत की घड़ी नसीब फरमा। सहरियों में भी दुआएं मांगिए और इफ्तारियों में भी मांगिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा रोज़ेदार के लिए इफ्तारी के वक्त एक ऐसी दुआ है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत 1422। तो क्या पता चला कि दुआओं से गाफिल नहीं रहना। सवाल पैदा होता है कि क्या दुआ की कोई फजीलत भी है, कोई खूबी, कोई फ़ायदा है? जी, दुआ की बहुत सारी फजीलतें हैं। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे दुआएं मांगने का तरीका भी सिखा रहे हैं, फिर दुआ कबूल भी करेंगे, और उसके बाद फिर उसकी फजीलतें भी बयान करते हैं। अल्लाह से मांगने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह की ज़ात ऐसी हस्ती है कि जब बंदा उससे मांगता है तो अल्लाह इस मांगने पे इतना खुश हो जाता है कि मांगी हुई चीज़ तो दूसरी बात है, अल्लाह ताला उसको और देता है। दुआ इबादत है। सही रिवायत से आप तक, मेरे तक ये बात पहुंचती है, मुस्तनद अहमद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा में, कि मुझसे ही दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुआ आजजी, इनकसारी और बेचारगी के इजहार को कहते हैं। वही मस्कीन सी शक्ल जरा ज़हन में ले आइए किसी प्यारे की। कोई गलती हो गई, बच्चा है, उससे बर्तन टूट गया, कैसे मामा, मैंने नहीं किया, मामा मामा करता हुआ एकदम चेहरे पे बेचारगी ले आएगा। आपको कोई गम नहीं रहेगा, ग्लास टूट गया, आप उसको कहेंगे ना मेरा बच्चा, तेरा दिल ना टूट जाए। और इबादत की असल रूह अल्लाह ताला के सामने इसकी कुदरत का इजहार और इसकी इताअत करने का यकीन और अपनी कमाईगी का एहसास और जिल्लत के इजहार का नाम है। यानी इबादत में अबूदियत है, ये कह लीजिए। दुआ मांगने में अल्लाह की रहमत से बंदे के अंदर आजजी आती है। देखिए कई लोग हैं जो आज दुआ भी नहीं मांगते, कहते हम क्यों मांगे, हम तो सेल्फ मेड हैं, हम तो अपने कदमों पे खड़े हैं। तो ये तकब्बुर है। अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि बंदा उससे ना मांगे। अल्लाह को अच्छा लगता है बंदा मांगे। है दुनिया में कोई ऐसा बादशाह जो कि मांगो और खूब मांगो और ना मांगने वाले से नाराज़ हो? अल्लाह नाराज होता है उस बंदे से जो अल्लाह से नहीं मांगता। और दुआ तो अबूदियत की अलामत है, और दुआ तो ऐन इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। यानी जब आप दुआ मांग रहे होते हैं तो आप इबादत की हालत में होते हैं। तो इस हदीस से आपको क्या पता चल रहा है कि दुआ की कैफियत में आप इबादत में, आसान तरीन इबादत है मेरी गुमान में। ना वुजू करना शर्त है, ना सर पे दुपट्टा लेना फर्ज है, ना टोपी पहनना शर्त है। हमारे एक खास प्रोटोकॉल पे हर चीज को लगा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर कर ही नहीं पाते वो काम, कहते छोड़ो इतना मुश्किल है। नहीं, फिर आप देखिए कि दुआ की फजीलत में एक और चीज भी क्या है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया, जो अल्लाह से मांगना छोड़ दे अल्लाह ताला उस पर नाराज हो जाता है। तो आप और मैं अल्लाह को नाराज तो नहीं करना चाहते ना? इसी तरह नेक्स्ट रिवायत देखिए, हजरत अबू हुरैरा ही से है, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से बढ़कर कोई चीज काबिले इज्जत नहीं है। सुभान अल्लाह, यानी बीच में किसी को ना लाए। दुआ मांग लीजिए, अल्लाह आपको बाइज्जत कर देगा। और कहें लोगों से कि अल्लाह से मांगूंगी, बस कहते मैं ले दूंगा, मैं देता हूँ, नहीं, अल्लाह से मांगेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, ये भी दुआ की एक फजीलत है, बड़ी अजमत वाला अमर है। और दुआएं जो होती है ना, ये आफात और मुसीबतों की रोकथाम के आगे हथियार है। जैसे शील्ड होती है ना, इसी तरह दुआ भी एक शील्ड है। दुआ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अपनी और दूसरों की इसलाह, कामयाबी, दायमी खैर और भलाई, मुसीबतों और अकूबतों, अकूबत क्या होती है, ये अजाब और अल्लाह ताला की तरफ से जो पकड़ आती है, अकूबतों से तहफ्फुज़ और मौजूदा मसाइब जो हम पे मुसीबतें आई हुई हैं उसके इजाले का अहम तरीका है। आई हुई आजकल कोई मुसीबत मुसलमानों पे नहीं, पूरी दुनिया पे? जी, कोरोना वायरस। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को सारी दुनिया से दूर कर दे और हम मुसलमानों को इसे सबक सिखा दे कि हम मुसलमान बन के जिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, और जो अभी तक अल्लाह से दूर थे उनको अल्लाह से कुर्ब का जरिया बना दे। फिर इसी तरह आप देखिए कि दुआ आजकल के पुरफितन दौर की ज़रूरत है। बहुत सारे काम करते हुए दुआओं को ना भूलिएगा, क्योंकि दुआएं मांग के ही तो आप और मैं आगे चलते हैं, वरना तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल में चली जाए। फिर इसी तरह दुआ करती क्या है? अब ये बड़ा ही रकीक टॉपिक है, लेकिन सिर्फ हम इसको एक सोच बेदार करने के तौर पे कर लेते हैं। आगे जाकर इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसका कोई एक तरीकाकार होता है ना, तो दुआ क्या करती है? पहली बात है कि दुआ आने वाली मुसीबतों को रोकती है। दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है। और सुतून जैसे पिलर होता है ना, पिलर गिर जाए तो छत गिर जाती है ना, इसी तरह दीन गिर जाता है जब हमारी दुआओं में कमियां बेशियां होती हैं। और आसमानों और जमीन का नूर है दुआ। दुआ कदर और कजा को रद्द कर सकती है, यानी तकदीर को भी बदलती है। आप कहेंगे ये कैसे होता है? जी बिल्कुल होता है। अल्लाह ने उस बंदे की तकदीर में लिखा ही ये होता है कि इस बंदे की उम्र 60 साल है, लेकिन इसको दुआ की तौफीक दूंगा कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, फिर उस दुआ की वजह से मैं इसकी उम्र 70 साल कर दूंगा। और ये बिल्कुल सही रिवायत है, ला यरुद्दुल कदा इल्ल दुआ वला यजीद फिल उम्री इल्ल बिर्रु, के तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज नहीं बदल सकती और उम्र में नेकी के अलावा कोई इजाफा नहीं कर सकती। फिर इसी तरह से याद रखिएगा कि जैसे जैसे नेकी और उम्र बढ़ती है ना, इसी तरह इंसान के दुआएं मांगने से अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करता है और गुनाहों से इंसान रिस्क से महरूम हो जाता है। ये तो हम अपने अगले सेशन में देखेंगे ना कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रिस्क दिलवाती हैं और उसका ऑपोजिट रिस्क घटाती हैं। फिर अगली बात दुआ के लिए नोट कीजिए कि हर शख्स की दुआ कबूल होती है, शर्त एक है कि वो जल्दबाजी ना करें। अल्लाह के नबी ने जब बात फरमाई तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकता है कि कोई दुआ मांगे और जल्दी ना मांगे, कि जल्दी कबूल ना? हमें से कोई नहीं कहता कि मेरी दुआ कबूल हो लेकिन 10 साल बाद। तो आपने फरमाया कि जल्दबाजी ये है कि बंदा ये कह दे कि अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं। तो नोट कीजिएगा, आज के बाद ये जुमला नहीं बोलना कि अल्लाह तो मेरी सुनता नहीं, आई एम टू सिनर, मैं तो इतनी गुनाहगार हूँ, हाउ कैन अल्लाह रिस्पॉन्ड मी, ये नहीं कहना। फिर इसी तरह कबूलियत दुआ का असल राज दुआ मांगने का तरीका है। कैसे मांगते हैं आप, वो कैसे मांगता है, कितनी शिद्दत से मांगता है, और आप खुश होंगे दौरे कुरान में, कुरान पाक का एक बेशतर हिस्सा, बिग पार्ट इज दुआओं से। तकरीबन 48 से 50 दुआएं हैं पूरे कुरान में, और अमूमन हम हर साल दौरे कुरान में हर पारे के साथ पारे की दुआएं याद करते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत मौका, नियत कीजिए चलिए कि इस साल मैंने पूरे कुरान पाक की दुआएं 30 दिन में याद करनी है। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मगज है। जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उसे नाखुश होता है। दुआ यकीन का नाम है, यकीन से मांगेंगे तो दुआ जरूर कबूल होगी। फिर दुआ अगर दिल से निकले तो दिल में उतरेगी। दुआ बंदे और रब का ताल्लुक है, और दुआ खालिक और मखलूक का राबता है, यानी ये फोन कॉल है, एक एक राबता नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है। दुआ मालिक और ममलूक के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। दुआ एक अजीम नेमत और अनमोल तोहफा है। करना क्या है, ये जुमला बोलिए जो अल्लाह ने सूरत मरियम की आयत 4 में सिखा दिया, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांगकर कभी भी ना मुराद नहीं हुआ। और इसके बाद करने के कामों में क्या है, पहली चीज यह है कि चूंकि रमजान आ रहा है तो रमजान से मुतल्लिक दुआएं याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान का एक ट्राई फोल्ड कार्ड है, हर साल हम उसको काफी कसरत में स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में कोई लेना चाहे, किसी एडमिन से बात कीजिए और उसको लेकर दूसरों से भी शेयर करें। इसमें चंद दुआएं हैं जो आज दुआओं के सेशन में माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने सीखी, मैं सुनने वालों के लिए सिर्फ दोहरा देती हूँ ताकि फिर वो भी इससे फायदा उठा सके। रमजान से मुतल्लिक दुआओं में एक दुआ क्या है, नया चांद देखने की दुआ। और ये हर चांद को देखने की सेम ही दुआ है। याद रखिए कि रमजान की अलग से कोई दुआ नहीं है, कोई हर दिन की अलग दुआ नहीं है। ये अशरों की भी जो दुआएं हैं, ये बाद में कुछ लोगों ने अपने तजुर्बात से बनाई, लेकिन हदीस से उसका भी कोई रेफरेंस मुझे तो नहीं मिला। तो चांद देखने के लिए हर चांद का इहतमाम करना चाहिए। और उस वक्त जो नए चांद की दुआ है वो क्या है, अल्लाहुम्मा हिल्लहु अलैना बिलअमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफीकि लिमा तुहिब्बु रब्बना वतरदा रब्बुना व रब्बुक अल्लाह। ए अल्लाह, तो इस चांद को हम पर तुलू कर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ, और इस चीज की तौफीक के साथ जिससे तू मोहब्बत करता है ए हमारे रब, और जिसे तू पसंद करता है ए चांद हमारा और तेरा रब अल्लाह है। आप चांद देखते हुए ये दुआ मांग लीजिए। और ये आसमान के चांद की बात है, आपके अपने चांद को देखने की दुआ नहीं है। वो तो आप दिन में 10 दफा देखें अपने चांद जैसे बच्चे को और अपने चांद जैसे चेहरे को देख लीजिए, उसकी अलग से दुआएं हैं। लेकिन ये आसमान के चांद की दुआ, जिसमें अकीदा भी छुपा दिया कि चांद की पूजा ना करो, रब्बे चांद की पूजा करो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ये दुआ मांग लेता है तो पूरा महीना अल्लाह ताला उसको शर और फितनों से महफूज रखता है। इस दफा का चांद जो जाहिर है कि रमजान का होगा, इस दुआ के साथ ये दुआ को पढ़िएगा कि अल्लाह ये कोरोना वायरस का फितना पूरी दुनिया से हटा दे। इसके बाद आप देखिए कि इफ्तारी के बाद की एक दुआ हमें सही हदीस से मिलती है, ज़हब अल दमाउ व बतलतिल उरूकु व सबत अल अजरू इंशा अल्लाह। प्यास चली गई और रगें तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। ये कब मांगनी है, जब खजूर खा ली और पानी का घूंट भर लिया। तर्जुमा कितना प्यारा, ज़हब अजम, प्यास चली गई। जहर आप चली तब जाएगी ना जब पी चुके होंगे, तो रगें तर हो गई और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लिस साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां, एक वो खुशी जो रोजा खोलते वक्त मिलती है और एक जिस दिन क्यामत के बाद अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो इमेजिन कीजिए कि जब इफ्तारी के वक्त रूह अफ़ज़ा या दूध सोडा या स्कंजवी पीते हैं तो क्या कैफियत है, तशक्कुर की बात है। फिर इसी तरह आपका इफ्तार करवाता है कोई रोजा, जैसे बीवियां, माएं, बहनें, बेटियां रोज इफ्तार करवा रही होती हैं पका पका के, और बाप, भाई, बेटे इफ्तार करवा रहे होते हैं बाजार से खाना खरीद के, या फिर कभी मोहल्ले से ट्रे लगी हुई आती है जिसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो ऐसे रोजा इफ्तार करवाने वाले को, या फिर जब इफ्तारियां की जाती हैं तो आपकी कोई इफ्तारी करवाता है तो क्या दुआ करती है उसके लिए, अफ्तरा इंदकुमुस्साइमून, तुम्हारे पास रोजेदारों ने इफ्तार किया, वखलत आमकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, रोजेदार तुम्हारे यहाँ रोजा इफ्तार करते रहें और नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। कितनी प्यारी दुआ, मैं तो आप सबकी इफ्तारी करवा दूं अगर आप मुझे ये यकीन दिलाएं कि आप मुझे ये दुआ देंगे। लेकिन ये कोई वादा नहीं कि पकोड़े, समोसे और बिरयानी कौरमे, मैं इतना कुछ नहीं दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूर से रोजा खुलवा दो। तो लंबी चौड़ी इफ्तारियों की बजाय सिंपल सादी इफ्तारियां, और ज्यादा लोगों तक ये खाने पीने की चीजें भेज दें। इस पे हम कर भी सकते हैं, खजूरें तो सभी लेते हैं ना। आप खजूर लाके मुझे दे दें, मैं खजूर लाके आपको दे दूंगी। मैंने खजूर खरीदी तो मैंने फायदा लिया, मैंने खजूर खरीद को आपको दी तो मुझे भी फायदा, आपको भी फायदा। एक्सचेंज कीजिए अपने करीब रहने वालों के साथ, एक्सचेंज कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी ग्रोसरी का बिल उनके घर जाएगा और उनकी ग्रोसरी का बिल आपके घर जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसी तरह रमजान में लैलतुल कद्र की एक दुआ हमें सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला और माफी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ कर दे। तो इस दुआ को भी याद कीजिए और इन सब की डिटेल्स भी जरूर सुनिए, इस पे बहुत कुछ हुआ हुआ है अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से। फिर इसी तरह ईद की तकबीरात हैं जो इंशाल्लाह ईद के मौके पे पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है, महसूस कीजिए इसको दिल पे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के लिए सब तारीफ है, और अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, और सुबह शाम अल्लाह के लिए पाकीज़गी है। तो क्या पता चला कि ये तकबीरात भी हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रमज़ान में ख़ास तौर पे दुआओं के मांगने का एहतमाम भी करें और इसके ऊपर वक्त भी लगाएं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो आपसे मुझसे राज़ी हो जाए। तो ये था रमज़ान और दुआ, इसको हमने आज अपने लिए सोच के साथ सुनना भी है और बाद में इस पे अमल भी करना है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। जज़ाकल्लाह खैर।